दानियल की पुस्तक 59:69। दानियल के दर्शन में 3 स्वर्ग द्वितीय स्पर्शों का अनावरण, एक भविष्य सूचक प्रकटीकरण।
10वें अध्याय में दानियल को 3 बार स्पर्श किया जाता है और वे तीनों स्पर्श उन 3 अवसरों के अनुरूप हैं जब दानियल व्यक्तिगत रूप से मरे अर्थात दर्शन का अनुभव करता है। पहला और अंतिम प्रकट होना गब्रियल का था, जो यीशु मसीह के प्रकाशन का दूत है। गब्रियल वही है जो मसीह से, जो उन्हें पिता द्वारा दिया गया था, संदेश ग्रहण करता है और उसे भविष्यद्वक्ता तक पहुंचाता है, जिसे उसे कलीसियाओं के पास भेजना है।
परंतु मैं तुझे वो दिखाऊंगा जो सत्य की पुस्तक में लिखा है, और इन बातों में मेरे साथ ठहरने वाला कोई नहीं, केवल तुम्हारा प्रधान मीकाएल। दानियल 10:21।
गैब्रियल जानता है कि वो एक सृजित प्राणी है और इसी कारण उसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यूहन्ना को स्पष्ट रूप से मना किया कि वो उसकी आराधना न करे।
और मैं उसे दंडवत करने के लिए उसके चरणों पर गिर पड़ा, पर उसने मुझसे कहा, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे उन भाइयों का संग दास हूं जिनके पास यीशु की गवाही है। परमेश्वर की उपासना कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। प्रकाशित वाक्य 19:10।
अतः भविष्यवाणी का विद्यार्थी ये समझे कि गब्रियल द्वारा ये पहचान कराना कि सत्य के धर्म ग्रंथ में जो लिखा है के संबंध में उससे ऊपर कोई नहीं है, एक विशेष भविष्यवाणी संबंधी उद्देश्य रखता है। जब वो ये बताता है कि शास्त्रों को उससे बढ़कर केवल मसीह ही समझते हैं, वो मसीह की पहचान तुम्हारे राजकुमार मीकाएल के रूप में करता है। पर मीकाएल केवल राजकुमार ही नहीं, वो महादूत है।
तथापि प्रधान स्वर्गदूत मीकाएल ने, जब वो शैतान के साथ मूसा के शरीर के विषय में विवाद कर रहा था, तो उसके विरुद्ध निंदात्मक दोषारोपण करने का साहस न किया, परंतु कहा, प्रभु तुझे डांटे, यहूदा 7।
अतः तीनों स्पर्श स्वर्गदूत के स्पर्श है और जिन 3 बार डैनियल ने मारे दर्शन का अनुभव किया वो स्वर्गदूत संबंधी था। 3री बार डैनियल को छुआ गया उसे बल देने के लिए, क्योंकि इससे पहले 2रे स्पर्श पर उसका बल चला गया था।
तब फिर एक मनुष्य के समान रूप वाला आकर मुझे छू गया और उसने मुझे बल दिया और कहा, हे अति प्रिय मनुष्य मगदर, तुझ पर शांति हो, दृढ़ हो, हाँ दृढ़ हो। और जब उसने मुझसे बातें की तब मैं बल पा गया और कहा, मेरे प्रभु बोले, क्योंकि आपने मुझे बल दिया है। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं तेरे पास क्यों आया हूं? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा और जब मैं निकल जाऊंगा तो देख, यूनान का प्रधान आएगा। दानियल 10:18-20।
जब गब्रियल ने दानियल से पूछा, क्या तू जानता है कि मैं तेरे पास क्यों आया हूं? तब वो दानियल को ये स्मरण दिलाता है कि वो तुझे ये समझाने आया था कि अंत के दिनों में तेरी प्रजा पर क्या बीतेगी। अंत के दिनों के विषय में जो कुछ उसने दानियल को सिखाया था उसके अनुरूप गब्रियल तब ये कहता है कि वो फिर फारस के प्रधान से लड़ने को लौटेगा और जब मैं निकल जाऊंगा तो देख, यूनान का प्रधान आएगा। इसके बाद वो 11वें अध्याय का भविष्यवाणीमय वृत्तांत आरंभ करता है, जो वर्णन करता है कि अंत के दिनों में 144,000 पर क्या बीतती है। वो भविष्यवाणी का 9 करोड़ पीरुम पर फारस के प्रधान और यूनान के प्रधान के साथ होने वाली लड़ाई की पृष्ठभूमि में रखा गया है। क्रूश महान और सिकंदर महान के बीच का वास्तविक अंतराल 200 से अधिक वर्षों का था, परंतु प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय के महान भूकंप में अंतिम घटनाक्रम बहुत तेजी से घटित होते हैं और जैसे ही उत्तर के नकली राजा द्वारा 6ठा राज्य विजित हो जाता है, 7वां राज्य अर्थात 10 राजा जिनका प्रतिनिधित्व यूनान करता है तुरंत अपना राज्य पशु को देने पर सहमत हो जाते हैं। एक स्तर पर मरे हुए दर्शन का प्रयोग दानियल अध्याय 10 में 7 बार किया गया है। हम उन 7 में से 4 अवसरों पर विचार कर चुके हैं और ये पहचाना है कि पहला उल्लेख ये है कि कुरेश के 3रे वर्ष से पहले दानियल उस दर्शन को समझता था। अगले 3 उल्लेखों में प्रत्येक दर्शन पर होने वाले 3 स्पर्श दानियल के उस अनुभव की पहचान कराते हैं जब वो 21 दिनों के शोक से जागृत होता है। उसके पुनर्जीवन की ये जागृति सनातन सुसमाचार की 3 चरणीय प्रक्रिया पर संरचित है और वे 3ों चरण स्वर्गदूतों द्वारा निरूपित किए गए हैं, यद्यपि दूसरा चरण प्रधान स्वर्गदूत मीकाएल है, वही जिसने मूसा को मृत्यु से उठाया और उसे स्वर्ग में स्थानांतरित कर दिया।
अध्याय 10 में विजन शब्द जिन अन्य तीन बार आता है, वहां वो मारह नहीं है बल्कि मरा है। मरा मारह का स्त्रीलिंग रूप है। इसका अर्थ एक दर्शन है और कार्यकारक अर्थ में दर्पण या आयना भी है। इसकी परिभाषा की कुंजी ये है कि ये कार्यकारक है, ये अपीयरेंस का दर्शन है, परंतु अपने लिंग में भिन्न होने के कारण ये एक भिन्न भविष्यद्वाणी संदेश की पहचान कराता है। अपनी परिभाषा के अनुसार दर्पण ये संकेत करता है कि जो लोग इस दर्शन को देखते हैं वे किसी प्रकार का प्रतिबिंब देखते हैं। शब्द का यही वो तत्व है जो कार्यकारक है। मारह संदर्भ में किसी कार्यकारक शब्द की परिभाषा अत्यंत गहन है। कॉजिटिव शब्द कारणता की अवधारणा या किसी कार्य को घटित कराने की क्रिया से संबंधित है। भाषा विज्ञान में, विशेष रूप से क्रिया रूप विज्ञान में, प्रेरणार्थक रूप एक व्याकरणिक संरचना है जो यह दर्शाती है कि वाक्य का कर्ता किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से क्रिया द्वारा वर्णित कार्य को करवा रहा है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में क्रिया टू रीड तब प्रेरणार्थक बन जाती है जब हम कहते हैं टू मेक समवन रीड। यहां कर्ता किसी दूसरे व्यक्ति से पढ़ने की क्रिया करवाता है।
कारणवाचक रूप ये संकेत करता है कि कर्ता क्रिया द्वारा वर्णित कार्य को घटित कराने के लिए उत्तरदायी है। कारणवाचक उस प्रकार को संदर्भित करता है जिसमें किसी क्रिया या घटना को घटित कराया जाता है। जिन तीन अवसरों पर डैनियल ने हिब्रू शब्द माराह का प्रयोग किया है, उन सब में जो दर्शन देखा जाता है वो देखने वाले को उसी छवि में बदल देता है जिसे वो देख रहा है।
और पहले महीने के 24वें दिन जब मैं उस महान नदी के किनारे था जो हिद्देकेल है, तब मैंने अपनी आंखें उठाई और देखा, और देखो सन के वस्त्र पहने एक मनुष्य जिसकी कमर ऊफाज के उत्तम सोने से कसी हुई थी। उसका शरीर भी बैरल के समान था और उसका मुख बिजली के रूप मरेख के समान था, और उसकी आंखें आग के दीपकों के समान थीं, और उसकी भुजाएं और उसके पांव रंग में चमकाए हुए पीतल के समान थे, और उसके वचनों की आवाज एक बड़ी भीड़ की आवाज के समान थी। और मैं दानियेल ही अकेला उस दर्शन मरेख को देख रहा था, क्योंकि जो पुरुष मेरे साथ थे उन्होंने उस दर्शन मरेख को नहीं देखा, पर उन पर बड़ा कांपना छा गया, इसलिए वे अपने को छिपाने के लिए भाग गए। इसलिए मैं अकेला रह गया और मैंने ये बड़ा दर्शन मरेख देखा, और मुझ में कोई शक्ति न रही, क्योंकि मेरी शोभा मेरे भीतर भ्रष्टता में बदल गई और मुझ में कुछ भी शक्ति न रही। तो भी मैंने उसके वचनों की आवाज सुनी, और जब मैंने उसके वचनों की आवाज सुनी तब मैं मुंह के बल गहरी नींद में पड़ गया और मेरा मुख भूमि की ओर था। दानियेल 10:9।
21 दिनों के शोक के अंत में, जो अंतिम दिनों में उन 3.5 दिनों के साथ मेल खाते हैं जब दो गवाह सड़क पर मृत पड़े होते हैं, दानियेल को अचानक मसीह का रूप दिखाया गया और उनका रूप बिजली के रूप मरह जैसा है। वो घटना प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय के 3.5 दिनों के अंत में एक पृथक्करण उत्पन्न करती है, क्योंकि दानियेल के साथ जो पुरुष थे उन्हें देखना वो दर्शन मरह नहीं कराया गया, बल्कि उन पर बड़ी कंपकंपी छा गई और वे अपने आप को छिपाने के लिए भाग गए। इसलिए दानियेल अकेला रह गया, परंतु मेरे साथ जो पुरुष थे देखने के लिए बाध्य किए गए वो दर्शन मरह नहीं बल्कि उन पर बड़ी कंपकंपी छा गई और वे अपने आप को छिपाने के लिए भाग गए। जब दानियेल अकेला था तब जो दर्शन उसने देखा वो स्त्रीलिंग कारणात्मक दर्शन था जिसने दानियेल को उस दर्शन की छवि के अनुरूप बना दिया। ये रूपांतरण इस प्रकार पूरा हुआ कि दानियेल की मानवीय शक्ति दूर कर दी गई और उसकी शोभा भ्रष्टता में बदल गई।
वो स्वयं देह जिसमें आत्मा वास करती है और जिसके माध्यम से वो कार्य करती है प्रभु की है। जीवित तंत्र के किसी भी भाग की उपेक्षा करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। जीवित शरीर का प्रत्येक अंश प्रभु का है। अपने शारीरिक संगठन के ज्ञान से हमें ये सीख मिलनी चाहिए कि प्रत्येक अंग धर्म के साधन के रूप में परमेश्वर की सेवा करे। ईश्वर के सिवा कोई भी मनुष्य के हृदय के अभिमान को वश में नहीं कर सकता। हम अपना उद्धार स्वयं नहीं कर सकते, हम अपने आप को नया जन्म नहीं दे सकते। स्वर्गीय प्रांगणों में ऐसा कोई गीत नहीं गाया जाएगा, मुझे जिसने स्वयं से प्रेम किया, स्वयं को धोया, स्वयं को छुड़ाया, मेरी ही हो महिमा और आदर, आशीष और स्तुति। पर इस संसार में बहुत से लोग जो गीत गाते हैं उसका यही मुख्य स्वर है। वे नहीं जानते कि हृदय में नम्र और दीन होना क्या होता है, और यदि इससे बच सके तो वे इसे जानना भी नहीं चाहते। पूरा सुसमाचार इसी में निहित है कि हम मसीह से उसकी नम्रता और दीनता सीखें। विश्वास द्वारा धर्म सिद्धि क्या है? ये परमेश्वर का कार्य है जो मनुष्य की महिमा को धूल में मिला देता है और मनुष्य के लिए वो करता है जो वो अपने लिए स्वयं नहीं कर सकता। मंत्रियों के लिए गवाहियां 6 फाप्स।
विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने का अनुभव मनुष्य की महिमा को धूल में मिला देने वाला परमेश्वर का कार्य है। दानियेल के साथ जो पुरुष थे, जिस दर्शन को देखकर वे भागने पर मजबूर हो गए, वो मसीह के प्रकट होने का कार्यकारक स्त्रीलिंग दर्शन था। और जैसे ही दानियेल की आत्मधार्मिकता धूल में मिल गई, उसे 3 स्वर्गदूतीय स्पर्श मिले, जिन्होंने अंततः दानियेल को संदेश देने के लिए सामर्थ्य दी। 1880 फेथ में बलवान स्वर्गदूत विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के संदेश के साथ अवतरित हुआ, जैसा कि एल्डर जोन्स और वैगनर ने प्रस्तुत किया था। वही स्वर्गदूत 11 सितंबर 2001 को उसी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के संदेश के साथ फिर से अवतरित हुआ। ये 144,000 के मोहरबंदी की शुरुआत का संकेत था। 144,000 की मोहरबंदी के अंत में आरंभ का संदेश फिर से दोहराया जाता है, क्योंकि यीशु हमेशा किसी बात के अंत को उसकी शुरुआत से दर्शाते हैं। 11 अगस्त 1840 को वही स्वर्गदूत उतरा और 1840 से 1844 तक संपन्न हुए 3 चरणों की शुरुआत की। वे 3 चरण 11 अगस्त 1840 को पहले स्वर्गदूत के सशक्तिकरण से आरंभ हुए, 19 अप्रैल 1844 को दूसरे स्वर्गदूत के आगमन से आगे बढ़े और 22 अक्टूबर 1844 को तीसरे स्वर्गदूत के आगमन पर पूर्ण हुए। वो इतिहास 11 सितंबर 2001 को 3 स्वर्गदूतों में से पहले के उतरने का पूर्व चित्रण था, जिसके बाद 18 जुलाई 2020 की निराशा के समय दूसरा स्वर्गदूत आया और ये शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के समय तीसरे स्वर्गदूत के आगमन के साथ समाप्त होता है। उस इतिहास के अंत में, जब मीकाएल सड़कों पर मृत्यु के 3.5 दिनों के बाद मूसा और एलिया को पुनर्जीवित करने के लिए उतरता है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में दर्शाया गया है और जैसा कि दानियेल के शोक के 21 दिनों द्वारा भी दर्शाया गया है, मसीह फिर से उतरते हैं। वो पहले अपनी महिमा का दर्शन कराते हैं, ऐसा दर्शन जो मनुष्य की महिमा को धूल में मिला देता है और एक पृथक्करण उत्पन्न करता है। जब दानियेल धूल में गिर चुका होता है और प्रेरणार्थक स्त्रीलिंगी दर्शन को निहार कर परिवर्तित हो चुका होता है, तब उसे पहली बार गब्रियल स्पर्श करता है और उसे उसके कांपते पैरों पर खड़ा कर देता है। तब प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल मूसा को जिलाने के लिए उतरता है और दानियेल को दूसरी बार छूता है। वो इस सच्चाई से अभिभूत होकर शक्तिहीन रह जाता है कि वो वास्तव में अपने प्रभु से बात कर रहा था। फिर गब्रियेल आता है और उसे तीसरी बार छूता है और शीघ्र आने वाले रविवार के कानून में ध्वजवाहक बनने के कार्य के लिए उसे सामर्थ्य देता है। ये 3 स्पर्श प्रकाशित वाक्य 14 के 3 स्वर्गदूतों के प्रतीक हैं, यद्यपि वे एक ही दिन में घटित होते हैं। पहले स्वर्गदूत के अनुभव में मसीह का बिजली की तरह प्रकट होना, कारक दर्शन जो अलग करता है, और पहला स्पर्श जो दानियेल को उसकी मानवीय महिमा की धूल से उठा देता है शामिल है। पहला स्वर्गदूत उन 3 चरणों को समेटे हुए है जो प्रथम में शामिल है, क्योंकि वो प्रथम संदेश का प्रतिनिधित्व करता है। ये संयोग नहीं है कि पहला स्पर्श पद 9 से 11 में दर्ज है।
फिर भी मैंने उसके वचनों का स्वर सुना, और जब मैंने उसके वचनों का स्वर सुना तब मैं मुंह के बल गहरी नींद में पड़ गया और मेरा चेहरा भूमि की ओर था, और देखो एक हाथ ने मुझे छुआ और मुझे घुटनों और हाथों की हथेलियों के बल सहारा देकर उठा दिया। और उसने मुझसे कहा, हे दानियेल, अत्यंत प्रिय पुरुष, जो बातें मैं तुझसे कहता हूँ उन्हें समझ और सीधा खड़ा हो जा, क्योंकि क्योंकि अब मैं तेरे पास भेजा गया हूँ। और जब उसने ये बात मुझसे कही तब मैं कांपता हुआ खड़ा हो गया। दानियल 10:9-11।
दूसरे स्पर्श जो स्वयं मसीह ने दिया का अनुभव दानियल को बोल न सकने की अवस्था से अपने प्रभु से बोल सकने की अवस्था में बदल देता है। उस दूसरे स्पर्श में दानियल में श्वास नहीं रहती, इसलिए यहां उसे यहेजगेल के अध्याय 37 के प्रथम संदेश की स्थिति में दिखाया गया है।
और जब उसने मुझसे ऐसी बातें कहीं तो मैंने अपना मुख भूमि की ओर झुका लिया और मैं निःशब्द हो गया। और देखो, मनुष्यों के पुत्रों के समान एक ने मेरे होंठों को छुआ। तब मैंने अपना मुंह खोला और जो मेरे सामने खड़ा था उससे कहा, हे मेरे स्वामी, इस दर्शन के कारण मेरी पीड़ाएं मुझ पर आ पड़ी है और मुझ में कोई शक्ति नहीं रह गई है, क्योंकि इस मेरे स्वामी का दास इस मेरे स्वामी से कैसे बात कर सकता है, क्योंकि मेरे विषय में तुरंत ही मुझ में कोई शक्ति नहीं रही और मेरे भीतर श्वास भी नहीं बची। दानियल 10:15-3।
यहेजकेल के दूसरे समेच में चारों पवनों का संदेश हड्डियों पर फूंका जाना है ताकि वे जीवित हो उठे और एक शक्तिशाली सेना की तरह खड़ी हो जाए। उस सेना का सशक्तिकरण तीसरे स्पर्श द्वारा दर्शाया गया है।
तब फिर एक मनुष्य के समान दिखाई देने वाला आकर मुझे छू गया और उसने मुझे बल दिया और कहा, हे अत्यंत प्रिय मनुष्य, मत डर, तुझे शांति हो, बलवंत हो, हाँ बलवंत हो। और जब उसने मुझसे ये कहा तो मुझे बल मिला और मैंने कहा, मेरे प्रभु बोले, क्योंकि आपने मुझे बल दिया है। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं तेरे पास क्यों आया हूँ, और अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने के लिए लौट जाऊंगा, और जब मैं निकल जाऊंगा तो देख, यूनान का प्रधान आ जाएगा, पर मैं तुझे वो बताऊंगा जो सत्य के लेख में लिखा हुआ है, और इन बातों में मेरे साथ ठहरने वाला कोई नहीं, केवल तुम्हारा प्रधान मीकाएल। और मैं भी मादी दारा के पहले वर्ष में उसे स्थिर करने और बल देने के लिए खड़ा रहा, और अब मैं तुझे सत्य बताऊंगा। देख, फारस में अभी 3 राजा उठ खड़े होंगे और चौथा उन सब से बहुत अधिक धनी होगा, और अपनी धन संपत्ति से प्राप्त सामर्थ्य के कारण वो सबको यूनान के राज्य के विरुद्ध उकसाएगा। दानियल 10:18 के अंडर 2।
यहेजकेल अध्याय 37 में जो संदेश उन दो गवाहों को जीवन प्रदान करता है वह तीसरे हाय का इस्लाम का संदेश है, परंतु क्रमशः वह संदेश जिसे गब्रियल मीकाएल द्वारा मूसा को उठाकर और उसे एक ध्वज के रूप में स्वर्ग में ले जाने के दृष्टांत में पहचानता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतिम राष्ट्रपति का संदेश है। वो 6 राष्ट्रपति रिपब्लिकन सिंह का संदेश है जो 2020 में वध किया गया, जैसा कि सच्चा प्रोटेस्टेंट सिंह भी किया गया था। दानियल की कथा में सच्चे प्रोटेस्टेंट सिंह के लिए शोक के दिनों से हुआ पुनरुत्थान रिपब्लिकन सिंह के पुनरुत्थान की पहचान की ओर ले गया। दानियल अध्याय 10 में दर्शन या प्रकट रूप शब्द का प्रयोग 7 बार किया गया है। उन 7 संदर्भों की पहचान उसी इब्रानी शब्द से की गई है, इस अपवाद के साथ कि उनमें से 3 बार वो शब्द स्त्रीलिंग रूप में है और अन्य 4 बार पुल्लिंग रूप में है। 7 पूर्णता की संख्या है और 3-4 का वो संयोजन जो 7 के बराबर होता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की एक प्रमुख विशेषता है, जहां 7 कलीसियाओं में से अंतिम 3 और 7 मुहरों में से अंतिम 3 और 7 तुरहियों में से अंतिम 3 को प्रथम 4 से विशेष रूप से पृथक ठहराया गया है। दानियल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तकें एक ही पुस्तक है, और इस अर्थ में दानियल और यूहन्ना अंतिम दिनों का एक ही प्रतीक है। अध्याय 10 में मसीह का जो दर्शन है वही प्रकाशित वाक्य के अध्याय 1 में मसीह का दर्शन है। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में यूहन्ना अपने पीछे से एक आवाज सुनता है और बोलने वाले को देखने के लिए मुड़ता है।
मैं प्रभु के दिन आत्मा में था और मेरे पीछे से तुरही के समान एक बड़ी आवाज सुनी जो कहती थी, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम हूं, और जो कुछ तू देखता है उसे एक पुस्तक में लिख और उसे एशिया में जो 7 कलीसियाएं हैं उनके पास भेज, इफिसुस, स्मिर्ना, पर्गमुस, थुआतीरा, सार्दिस,
फिलाडेल्फिया और लौदिकिया, प्रकाशित वाक्य 1:10-11।
चाहे वो दानियेल अध्याय 10 में तीन स्पर्श हों या प्रकाशित वाक्य के अध्याय 1 में वही दर्शन, या यहेजकेल के अध्याय 37 में दो संदेश, या यशाया का वेदी पर से ली हुई जलती हुई अंगारी से स्पर्श किया जाना, ये अनुभव अंतिम चेतावनी के संदेश के सामर्थ्य प्रदान की पहचान कराता है। और वो संदेश जुलाई 2023 में दो गवाहों के पुनरुत्थान से आरंभ होता है। दानियेल, यूहन्ना, यहेजकेल और यशाया, ये सभी उस संदेशवाहक का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पीछे पुराने मार्गों से आने वाली वाणी को सुनता है, जो पूछती है, मैं किसको भेजूं? जब वो संदेशवाहक उत्तर देता है, मैं यहां हूं, मुझे भेज, तब वो सामर्थ्य पाता है और अपना स्वर ऊंचा करता है, मानो जंगल में पुकारने वाला कोई हो। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हम अपने अगले लेख में इस अध्ययन को जारी रखेंगे।
अभी वर्णित अवसर पर स्वर्गदूत गब्रियल ने दानियेल को उतनी ही शिक्षा दी जितनी वह उस समय ग्रहण कर सकता था। कुछ वर्षों बाद हालांकि भविष्यद्वक्ता ने उन बातों के बारे में, जो अभी पूरी तरह समझाई नहीं गई थी, अधिक जानने की इच्छा की और वो फिर से परमेश्वर से ज्योति और बुद्धि की खोज करने लगा। उन दिनों में दानियेल 3 पूरे सप्ताह तक शोक करता रहा। मैंने कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया, न मांस और न ही दाख मधु मेरे मुख में आया, न ही मैंने अपने शरीर पर कोई तेल लगाया। तब मैंने अपनी आंखें उठाईं और देखा, देखो एक व्यक्ति जो मलमल के वस्त्र पहने था और जिसकी कमर उफाज के उत्तम सोने से कसी हुई थी, उसका शरीर भी बेरिल रत्न के समान था और उसका मुख बिजली की चमक जैसा, उसकी आंखें आग के दीपकों के समान और उसकी भुजाएं और उसके पांव रंग में चमकाए हुए पीतल के समान थे और उसके वचनों की आवाज जनसमूह की ध्वनि के समान थी। दानियेल 10:6। ये वर्णन उस वर्णन के समान है जो यूहन्ना ने तब दिया था जब पटमोस द्वीप पर उन्हें मसीह प्रकट हुए थे। कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर का पुत्र दानियेल को प्रकट हुआ। हमारे प्रभु एक अन्य स्वर्गदूत के साथ आते हैं ताकि दानियेल को ये सिखाएं कि अंतिम दिनों में क्या होने वाला है। विश्व के उद्धारकर्ता द्वारा प्रकट किए गए महान सत्य उन लोगों के लिए हैं जो सत्य को छिपे हुए खजानों की तरह खोजते हैं। दानियेल एक वृद्ध व्यक्ति था। उसका जीवन एक अन्य जाति दरबार के आकर्षणों के बीच बीता था और उसका मन एक महान साम्राज्य के मामलों में उलझा हुआ था। फिर भी वो इन सब से अलग होकर परमेश्वर के सम्मुख अपनी आत्मा को दीन करता है और परम प्रधान के उद्देश्यों का ज्ञान खोजता है और उसकी विनतियों के उत्तर में स्वर्गीय दरबारों से प्रकाश उन लोगों के लिए प्रेषित किया गया जो अंतिम दिनों में जीवित होंगे। तो फिर हमें कितनी गंभीरता से परमेश्वर को खोजना चाहिए ताकि वो हमारी समझ खोल दे और हम स्वर्ग से हमारे पास लाई गई सच्चाइयों को समझ सकें। मैं दानियेल अकेला ही वो दर्शन देख रहा था, क्योंकि जो पुरुष मेरे साथ थे उन्होंने वो दर्शन नहीं देखा, परंतु उन पर बड़ी थरथराहट छा गई, इसलिए वे छिपने के लिए भाग गए और मुझ में कोई शक्ति न रही, क्योंकि मेरी शोभा मेरे भीतर भ्रष्टता में बदल गई और मुझ में बल शेष न रहा। 7:8। जो वास्तव में पवित्र किए गए हैं उन सब का अनुभव भी इसी प्रकार का होगा। मसीह की महानता, महिमा और सिद्धता के विषय में उनकी दृष्टि जितनी स्पष्ट होगी, उतने ही स्पष्टता से वे अपनी कमजोरी और अपूर्णता को देखेंगे। उनमें निष्पाप चरित्र का दावा करने की प्रवृत्ति नहीं होगी, जो उन्हें अपने में सही और शोभनीय प्रतीत हुआ है। वो मसीह की पवित्रता और महिमा की तुलना में केवल अयोग्य और नाशमान दिखाई देगा। जब मनुष्य परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, जब मसीह के विषय में उनकी दृष्टि अत्यंत अस्पष्ट होती है, तभी वे कहते हैं, मैं निष्पाप हूँ, मैं पवित्र किया गया हूँ। अब गब्रियल भविष्यद्वक्ता को दिखाई दिया और इस प्रकार उससे बोला, हे दानियेल, अत्यंत प्रिय पुरुष, मैं जो तुझसे बातें करता हूँ उन्हें समझ और सीधा खड़ा हो जा, क्योंकि अब मैं तेरे पास भेजा गया हूँ। और जब उसने मुझसे ये वचन कहा तो मैं कांपता हुआ खड़ा हो गया। तब उसने मुझसे कहा, मत डर दानियेल, क्योंकि जिस दिन से तू समझने के लिए अपना मन लगाकर अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र किया, उसी दिन से तेरी बातें सुनी गईं, और मैं तेरी बातों के कारण आया हूँ। पद 11-12। स्वर्ग के महाराजा धीराज ने दानियल को कितना महान सम्मान दिया है। वो अपने कांपते हुए दास को ढाढ़स देता है और उसे ये आश्वासन देता है कि उसकी प्रार्थना स्वर्ग में सुन ली गई है। उस उष्ण विनती के उत्तर में स्वर्गदूत गब्रियल को फारस के राजा के हृदय पर प्रभाव डालने के लिए भेजा गया। जब दानियल उपवास और प्रार्थना कर रहा था, उन 3 सप्ताहों के दौरान उस सम्राट ने परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणाओं का विरोध किया था, परंतु स्वर्ग का राजकुमार प्रधान स्वर्गदूत मीकाएल उस हठी राजा के हृदय को मोड़ने और दानियल की प्रार्थना के उत्तर में कोई निर्णायक कार्रवाई कराने के लिए भेजा गया। और जब उसने मुझसे ऐसे वचन कहे, तब मैंने अपना मुख भूमि की ओर कर लिया और मैं मूक हो गया, और देखो, मनुष्यों की संतानों की सदृश एक ने मेरे होंठों को छू लिया और कहा, हे अति प्रिय मनुष्य, मत डर, तुझे शांति मिले, दृढ़ हो, हाँ दृढ़ हो। और जब उसने मुझसे कहा, तब मैं बलवंत हुआ और कहा, मेरे प्रभु बोलें, क्योंकि तूने मुझे बल दिया है। पद 15-19। दानियल पर प्रकट हुई दिव्य महिमा इतनी महान थी कि वो उस दर्शन को सहन न कर सका। तब स्वर्ग के दूत ने अपनी उपस्थिति की दीप्ति को आच्छादित किया और भविष्यद्वक्ता के सामने मनुष्यों की संतानों के सदृश एक के रूप में प्रकट हुआ। पद 16। अपनी दिव्य शक्ति से उसने इस सत्यनिष्ठा और विश्वास योग्य पुरुष को बल दिया ताकि वो उस संदेश को सुन सके जो उसे परमेश्वर की ओर से भेजा गया था। दानियल परम प्रधान का समर्पित दास था। उसका दीर्घ जीवन उसके प्रभु की सेवा के उदात्त कार्यों से परिपूर्ण था। उसके चरित्र की पवित्रता और उसकी अटल निष्ठा की बराबरी केवल उसके हृदय की नम्रता और परमेश्वर के समक्ष उसके पश्चाताप से होती है। हम 2 हराते हैं। दानियल का जीवन सच्चे पवित्रीकरण का एक प्रेरित उदाहरण है। पवित्र जीवन 49:10-52।